पृथ्वी का
पृथ्वी पर कुपित होना। इस अध्याय के आज 31 नंबर श्लोक, यह एतत् आदौ असृजत् चराचरम् सोमायया आत्माश्रयया अवितर्कया त्वया एव सह अयम् कील गोप्तृम् उद्यतः कथम् नु माम् धर्मपरः जिघंसति। यः एतत् आदौ असृजच्चराचरम् सोमाययात्माश्रयावितर्कयः त्वयैव स्वयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघंसति। यः एतत् आदौ असृजच्चराचरम् सोमाययात्माश्रयया वितर्कयः त्वयैव स्वयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघंसति। यः एतत् आदौ असृजच्चराचरम् सोमायया आत्माश्रयः सोमायया आत्म आश्रया विकर्तयः त्वयैव स्वयं किल गोप्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघंसति। कोई बातें हैं?
यही तरादो असुजा चला चला, यही तरादो असुजा चला चला, सोमा आये आत्मा श्रय।
शब्दार्थ यह जो एतत् ये आदौ सृष्टि के आरंभ में असृजत उत्पन्न किया चराचरम जड़ तथा जंगम जीव सो मायया अपनी शक्ति से आत्माश्रयया अपने ही आश्रय में शरण प्राप्त अवितर्कया अकल्पनीय तया उसी माया से एव निश्चय ही सह वह अयम यह राजा कील निश्चय ही गुप्त मुद्यतः शरण देने के लिए तैयार कथम कैसे नू तब माम मुझको धर्म पर धर्म पालक जिंघांसति मारने की इच्छा करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इस समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियम के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? कृपया दोहराइए। अपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियम के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तात्पर्य पृथ्वी तर्क करती है कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आप उससे क्यों मारना चाह रहे हैं? अंततः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी ही उनके लिए खाद्य अन्न उत्पन्न करती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सो पदांतिकं। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं स श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखानितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह एतत् आदौ असृजत् चराचरम् सोमायया आत्माश्रयया अवितर्कया त्वयैव स्व अयं किल वक्तुम् उद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति। अपने सृष्टि के आरंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है, अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत है। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों है? तो जैसे पहले आप इस अध्याय को से श्रवण करके आ रहे हैं कि महाराज पृथ्वी ने पृथ्वी पर अत्यंत कोपित हुए। किस लिए कोपित हुए? जो महाराज पृथ्वी ने समग्र विश्व के राजा के रूप में सम्राट के रूप में ब्राह्मण तथा मुनि ऋषि के द्वारा अधिष्ठित किए गए और उसी समय उनके राज्य में दुर्भिक्ष व अनाज की कमी था, प्रजाओं को पेट भर खाने के आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पा रहा था। प्रजा लोग बड़े दुखी थे, भूखे थे, तो सारे प्रजा एकत्रित होकर आकर राजा के पास में अनुनय विनय किए थे। वह राजा के पास में कहे थे कि हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष की कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि व भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति व जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं, अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा नहीं है, आप भगवान के अवतार भी है। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा है। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजा राजेश्वर, उचित अर्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने के लिए व्यवस्था की आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अर्न के भाव से मरे नहीं। कि प्रजा बड़े दुखी थे, मरणासन्न हो गए थे बिना खाए खाद्य के अभाव से। इनकी जठराग्नि प्रज्वलित हो रहा था लेकिन इनको पर्याप्त खाद्य प्राप्त नहीं था। तो लोग ने इस प्रकार जब उन्होंने विनय की, राजा ने बड़े दुखी हुए और बड़े चिंतित होकर इसकी मूल कारण क्या है सोचने लगे कि क्यों मेरे राज्य में किसी लिए मेरे प्रजा भूखे हैं, अनाज की उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि महाराज पृथ्वी ने अनेक यज्ञ की अधिष्ठान किए थे, बहुत यज्ञ संपन्न किए थे। अज्ञात भवति भवति पर्जन्य पर्जन्यात् अर्न संभव, भगवान ने कहे यज्ञ करने से ही बारिश होता है, अब बारिश होने से फिर अनाज उगते हैं। राजा ने देखे कि महाराज पृथ्वी ने देखे कि वो तो अनेक पर्याप्त राजा राज सिंहासन में अधिष्ठित होने के साथ साथ अनेक यज्ञ के आयोजन किए, बहुत यज्ञ संपन्न किए, चाहे पृथ्वी पहले नहीं देती थी, किसके लिए ना, बेणा महाराज बेणा जैसे दुष्ट राजा की शासन था, तो इसलिए पृथ्वी ने सबको सप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। से कहा जाता कि जो सत्ययुग था, सत्ययुग में लोग, सत्ययुग कहते गोल्डन एज, उसके बाद त्रेता को कहते सिल्वर एज, द्वापर को ब्रास और कलयुग को लोहो युग है, लोहा के युग है ये। सत्य युग के मनुष्य को पर्याप्त सभी कुछ उपलब्ध था, यहां तक कहा जाता कि उस समय में जो लोग जो खान जो खाते थे, जो बर्तन वगैरह सो किस में होता था, सोने की गोल्डन पात्र में खाते थे लोग, सब जनरल पब्लिक सर्वत्र गोल्डन एज था, उसमें सोना की बहुत सोना होता, जो कुकिंग पॉट खाने के पत्र जो कुछ भी व्यवहार होता था वो सब सोने के में ही बना रहता था, धर्म की संपूर्ण चारों पैर मौजूद रहते थे। लेकिन धर्म की एक पैर नष्ट होने के कारण तृतीया में फिर लोग चांदी के बर्तन को जो कर रहे थे, चांदी के पात्र में कुकिंग करना, चांदी के पात्र में खाना, चांदी के सब व्यवहार होता था सब कुछ। लेकिन आस्ते आस्ते धर्म के दो पैर गिर गए द्वापर युग में प्रारंभ से ही, फिर लोग ब्रास मेटल में खाने लगे, पीतल के बर्तन सब कुकिंग आदि सब कुछ होता था। नहीं, कली युग में तीन पैर धर्म के गिर गए, गिर चुका है, तो इस पाल युग में किस में खा रहे हैं, सभी लोग लोहा के पात्र में खा रहे हैं, लोहा पात्र में, लोहा को थोड़ा मार्जन किया गया है, लोहा पात्र में खा रहे हैं। शास्त्र के आधार पर में लोहा पात्र में भगवान को, भगवान के लिए कुकिंग होता है न भगवान को अर्पण किया जाता है, कुकिंग करने का पात्र लोहे के नहीं होना चाहिए, स्टील पात्र में कुकिंग होने से भारी भक्त बिलास कहते कि भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान नहीं खाते उसको, अष्टधातु के पात्र में पीतल के पात्र कम से कम। लेकिन अभी लेकिन ये पृथ्वी इसलिए किस लिए छुपा लेती है, जब अधर्म की वृद्धि होता है, क्योंकि ये जो कलयुग के मनुष्य को यदि सोने के पात्र देंगे, सोने के पात्र में भी गोमांस खाएंगे और सोने के पात्र में भी क्या करेंगे, शराब पियेंगे। इसलिए माता पृथ्वी जो अयोग्य लोगों को देखता है, प्रजा जो बड़े बड़े अयोग्य होते हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं रहते हैं, दुराचारी अत्याचारी बनते हैं, तो फिर जो ऐश्वर्य जैसे वो छुपा लेती है, पृथ्वी सब कुछ छुपा लेती है। अभी सब कुछ है, वो सोने कहाँ गया, सत्ययुग के लोग सारे सोने में खाते थे, सोने के बर्तन में खाते थे, सोने के प्लेट में खाते थे, सोने के बर्तन में कुकिंग करे, वो सब सोना कहाँ गया, अभी सब पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी सब छुपा दी है, सब छुपा के रखी है। तो इस प्रकार महाराज बेणों के राज्य में, क्योंकि वो दुराचारी था, माता पृथ्वी ने सब छुपा ली थी, माता बेणों की अत्याचार देखकर माता पृथ्वी ने सब कुछ जो कि फैसिलिटी था सो यहां तक अर्ण भी सब छुपा ली थी। अर्ण के जो बीज प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा जी ने जब सब जड़ी बूटी तथा अर्णों की जो अनाज के जो बीज सब रोपण किए थे, तो उसको पृथ्वी सब छुपा ली थी अपने गर्भ में। इसलिए यदि वो यज्ञ करने से बारिश हो रहा था, यज्ञात भवति पर्जन्य, लेकिन इंद्र तो बारिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई अनाज उगते नहीं थे पृथ्वी में, पृथ्वी के पृष्ठ पर। इसलिए महाराज पृथ्वी ने बहुत चिंतन करके ही समझ गए कि इसी का ही दोष है, किसका, पृथ्वी का। यज्ञताम किए हैं, यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र भी बारिश करते हैं, लेकिन माता पृथ्वी ने अर्ण नहीं उगाती है, अनाज को नहीं उगाती है, हैं? ये कहां से वर्णों के बीज को छुपा दी, तो इसलिए बड़े क्रोधित हुए। इसके ऊपर क्रोधित हुए माता पृथ्वी के ऊपर क्रोधित हुए। भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, संतों को आश्वासन देने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए और धर्म को संस्थापना करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, लेकिन मुख्य काम उनकी है परित्राणाय साधुना। तो इसलिए प्रजा सब साधु थे, बेचारे निर्दोष थे, और राजा के होने के नाते उनकी ये कर्तव्य था कि प्रजाओं की पालन करना, प्रजाओं की जो आवश्यकता राजा को प्रदान करना इनके कर्तव्य है। प्रजा जो भूखे ही मर रहे तो राजा कहे किसलिए अपने सिंहासन में बैठे रहे, इसलिए उन्होंने बहुत चिंतन करके ही देखेगी ये सारे दोष पृथ्वी का है। यदि वो धरा वा पृथ्वी उनके ही एक अवतार में उन्होंने पृथ्वी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। किस अवतार में? बराह रूप में। बराह अवतार में भगवान ने अपने वही पृथ्वी को रक्षा करने के लिए ही जब ये हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर गर्भतक सागर में डुबा दी थी तो भगवान ने स्वयं स्वर के रूप धारण करके ही शुकर केश बध्रित शुकर रूप फिर उन्होंने पृथ्वी को वहां से उधारे थे अपने दांतों की सहारा से पृथ्वी को धारण करके उठे थे। तो स्वर कितना बड़ा होगा आपको आइडिया लगाइए। आप पृथ्वी देख रहे हैं ना कितना बड़ा पृथ्वी है। लोग पृथ्वी को पूरे गेंद की तरफ भगवान ने कहां धारण किए थे? दोनों दांत के बीच। तो स्वर का आकृति कितना बड़ा होगा जो कि पृथ्वी को अपने दोनों दांत के बीच में धारण कर सकता है। तो भगवान ने धारण किए थे तो भगवान के स्पर्श से उनके पुत्र भी पृथ्वी को प्राप्त हुआ था। कौन सा पुत्र? नरकासुर है, भौमासुर उसका दूसरा नाम भी, नरकासुर प्राप्त हुआ था। लेकिन भगवान ने उस नरकासुर अपने पुत्र को भी पहले मार डाले थे जो कृष्ण के रूप में आए थे। तो पुत्र को भी मार डाले थे, मारे थे ना? नहीं, उनके ही पुत्र था। पहले बराह अवतार में नरकासुर को उन्होंने पृथ्वी की भगवान के संयोग से ही नरकासुर को उत्पन्न हुआ था। लेकिन पहले बड़ा सदाचारी था और सब कुछ ठीक करता था। लेकिन जो द्वापर युग की प्रारंभ हुई सब वो कई युगों से माने सत्य युग से ही अभी तक चल रहा था, वो धरा पर प्रतिष्ठित था। लेकिन द्वापर युग में उसको कंस जरासंध बाणासुर काशीराज ये लोग के साथ संग करने के कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गया था। इसलिए देवताओं को आक्रमण के जब देवताओं को तंग किया, साधु संतों को तंग किया, माता अदिति देव माता देवताओं की माता जो अदिति की कान की कुंडल को भी छीन के लेके आया है, तो भगवान ने फिर अपने पुत्र होते हुए भी उसको मार डाले। नरकासुर को फिर उसके राजधानी था प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर कहाँ? आसाम, गुवाहाटी। गुवाहाटी को कहते प्रागज्योतिषपुर, वहां पर वो नरकासुर की राजधानी था। भगवान फिर जाकर नरकासुर को वध किया। इसलिए भगवान जब भी जगत के कल्याण के लिए सब समय चिंतन करते, संतों को रक्षा करना, साधुओं को पालन करना उन्हें कर्तव्य है। और अभी भी पृथ्वी महाराज के राजा के रूप में राजा की भूमिका निभा रहे हैं, तो राजा के कर्तव्य है कि प्रजाओं को पालन करना। और प्रजाओं को पालन करने में जो सहायता नहीं करता उनको क्रोधित होना स्वाभाविक है। देखिए, चाहे मेरी ये पृथ्वी को पहले मैं उठाया था गर्भवत सागर से उठा के लाया, ऊपर लाया था, लेकिन अभी वो मेरे सहायता नहीं करती है। हाँ, इसी कारण से सारे प्रजा इतने दुखी है। से राजा बड़ा क्रोधित होकर अपने धनुष और बाण उठा लिए, धनुष बाण लेकर पृथ्वी की लक्ष्य करे, लक्ष्य पृथ्वी को बिंधने के लिए लक्ष्य किए, वध करने के लिए। तभी पृथ्वी ने बड़े भयभीत हो गई, भयभीत होकर भागने लगी। उदाहरण देखिए, जैसे कोई हिरण को, कोई शिकारी जब हिरण के पीछे को लक्ष्य करके अपने धनुष और तीर धारण करके हिरण की तरफ लक्ष्य करता है, हिरण तुरंत क्या करता है? बहुत जोर से भागती है। ऐसे माता पृथ्वी ने तुरंत अपने रूप को भी बदल ली। किस रूप धारण किए? गाय के रूप। तो करीब माता पृथ्वी के प्रभुपाद देखते हैं, तात्पर्य माता पृथ्वी से सभी प्रकार कई प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जितने भी जीव धरती पर विचरण होते हैं, माता चाहेगी तो किसी भी रूप धारण करने के उसके पास ये योग शक्ति है। तो ऐसे ही आदि भौतिक रूप से उसके भी प्रत्यय का किसी आचार्य ने कहे कि नहीं, तीन रूप पृथ्वी के आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रूप भी होते हैं। जैसे तीन प्रकार की क्लेश है, इसमें तीन रूप भी धारण कर सकती है। आदि भौतिक रूप में तो पृथ्वी पूरा व्याप्त है, पूरा वो जो आप प्लैनेट देख रहे हैं पंचभूत से बना हुआ ये प्लैनेट है, शरीर है। किसका शरीर है? पृथ्वी का ही शरीर है, पंचभूत से जो हमारा शरीर बना हुआ ऐसे ही है। लेकिन फिर भी वो एक देवी है। जैसे महाराज पृथ्वी ने कहे कि तुम तो यज्ञ में तो देवताओं के साथ में मिलकर आके तो आपने भाग भी लिए, यज्ञ भाग को तुम उपभोग की है देवी के रूप में। जो कोई यज्ञ होता है उसमें पृथ्वी भी भाग लेती है यज्ञ में आकर, वो भी एक देवी मानी जाती है। 33 कोटि देवताओं की जो लिस्ट है उसमें से इनका नाम भी आती है पृथ्वी देवी है। जब ये भगवान की भू शक्ति भी मानी जाती है, भू शक्ति। जैसे श्रीदेवी भूदेवी है, तो ये भूदेवी के रूप में ये भू है, पृथ्वी है, ये तो ये भी यज्ञ में भाग लेती है। ये कौन सा रूप है उसकी जो देवी रूप में उन्होंने यज्ञ में भाग लेती है? प्रत्येक यज्ञ में जब पृथ्वी को आह्वान किया जाती है, धरा को भी अर्पण घी अर्पण करके उसको भी आह्वान दी जाती है, तो कौन सा रूप में ये स्वीकार करती है इसको है? किस रूप में यज्ञ की भाग लेती है? आधि दैविक देवी रूप में स्वीकार करती है, लेकिन अभी वो अपने कर्तव्य को निभाए नहीं। जब यज्ञ के भाग को स्वीकार की है महाराज पृथ्वी का, यज्ञ के भाग को स्वीकार करने का अर्थ तू तो अपना कर्तव्य निभाना, तुझे किस लिए मैं सृष्टि किया हूं? भगवान ही सृष्टि किया पृथ्वी को, लेकिन किसके लिए सृष्टि की? पृथ्वी धरा पर वा पृथ्वी के पृष्ठ में जितने भी जो प्राणी रहेंगे उनको सब उनकी आवश्यकता को जोगाने के लिए है। धरा से ही विशेष रूप में मनुष्य को जो खाने के लिए जो उनकी आहार है अनाज, इनको प्रदान करना उसी कर्तव्य है। और महाराज पृथ्वी देखे कि और दुराचारी राजा तो जा चुका है ऑलरेडी, बेण का मृत्यु हो चुका, तो अभी तो मैं तो आया हूं, स्वयं भगवान की अवतार है, उनको पता भी पृथ्वी कि ये जो ने पृथ्वी माता को पता कि ये जो महाराज पृथ्वी है वो संबोधन भी करते कि आप तो स्वयं भगवान के अवतार हो, और भगवान स्वयं आए व उनके शक्ति वैसे अवतार के रूप में पृथ्वी महाराज आए। वो जानते हैं ये सदाचारी राजा है, इनके राज अभिषेक हो चुका है, राजा ने इतने यज्ञ आदि संपन्न किए हैं, लेकिन फिर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, प्रजाओं को फिर भूखा नहीं रखना चाहिए, जो कुछ छुपा के रखी है अनाज वगैरह सब फिर ऊपर सब दे देना चाहिए प्रजाओं के हित के लिए। लेकिन माता पृथ्वी ने तुरंत ही देखा, जब महाराज पृथ्वी ने अपने धनुष बाण लेकर उनकी तरफ उनको बद्ध करने के लिए निशान करके पकड़े हुए, तो तुरंत ही गौरूप धारण कर लिया। किस लिए गौरूप धारण कर लिए? नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय, भगवान ने विशेष रूप में गाय और ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करते, कहे कि गौरूप धारण कर लूंगे तो मारेंगे नहीं, लेकिन भगवान छोड़ते हैं कोई गौरूप धारण करने के लिए? पहले कौन सुरक्षित भगवान की लीला में कोई गौरूप भी धारण किया था? भगवान छड़े कृष्ण है अरिष्टासुर, और एक बछड़ा के रूप भी धारण करके आए थे वत्सासुर, वत्सासुर और अरिष्टासुर ये दोनों भी गौरूप में आए थे, भगवान छोड़ दिए इनको है? दुष्ट है, दुष्ट होने से छुप जाने से थोड़ी छोड़ेंगे इनको, लेकिन ये माँ सोची कि चलो मैं गाय रूप और कहने लगे, फिर आगे भी स्तुति कर मैं एक स्त्री हूँ, साथ में स्त्री भी अवध्य माने जाते, स्त्री और गाय है, स्त्री स्त्री रूप में अवध्य मानने पर भगवान माँ छोड़े ना क्या पुतना को, छोड़े पुतना रखी से आई थी तो इसको समाप्त किया इसलिए। लेकिन माता पृथ्वी ने भी गाय रूप धारण कर भागने लगे, लेकिन क्या करना था प्रकृत में महापति को क्या करना था? दौर भगवान देखे कि भगवान धनुष बाण लेकर उस पूरा निशान कर जो वध करने के लिए खड़े हैं, तो क्या करना था पृथ्वी को? तुरंत ही खड़ा होकर हाथ ऊपर उठा देना चाहिए था। क्षेत्रीय राजा है, जो कोई शरणागत हो जाता हाथ ऊपर उठा देता फिर मारते नहीं है, जान से नहीं मारेंगे है? ये कोड़ी को नहीं मारे कौन? परीक्षित महाराज और पृथ्वी माता तो इतनी बड़ा कोई पाप नहीं किए, इतना बड़ा दोष नहीं किए, कड़ी तो क्या तीन टांग को काट दी थी किस धर्म के धर्म रूपी बैल का। माता पृथ्वी रो रही थी, परीक्षित महाराज धनु अपने खड़ग उठा लिए, उसको बद करने तुरंत ही वो हाथ उठा लिया, हाथ ऊपर उठाकर कहा कि मैं आपका प्रजा हूं ना, आपके शरण में आया। क्षेत्रीय राजा के सामने यदि कोई शरणागत तो हो जाता हाथ ऊपर उठा लेता तो फिर उसको जान से मारते नहीं है। नहीं पृथ्वी को वो न करके है वो गाय रूप धर्म में भागे, शरणा कर गई तो बस, लेकिन शरणागत नहीं होने के कारण और अधिक क्रोधित है, क्रोधित हुए कौन? महाराज पृथ्वी। लेकिन पिछले श्लोक में शरण में आई, लेकिन कई भाग भाग के और चला गए, कहा पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो अंतरिक्ष में भागती रहे गाय, गाय के रूप धारण करके, और महाराज पृथ्वी जहां भी भाग रही थी पीछे देख रहे थे महाराज उसके पीछे है, पृथ्वी महाराज धनुष बाण लेकर है, जैसे दुर्वासा के पीछे भागा था कौन? सुदर्शन, दुर्वासा के पीछे सुदर्शन से पीछा कर रहा था, ऐसे ही माता पृथ्वी के पृथ्वी के पीछे गौरूप धारण करने वाली माँ जो पृथ्वी के पीछे महाराज पृथ्वी भाग रहे थे, कहीं भी देखे और कोई आश्रय नहीं है, कोई भी कौन आश्रय देगा जिसको जिसको भगवान स्वयं वध करना चाहते हैं, जैसे पिछले तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये कृष्ण स्वयं वध करना चाहते कौन बचा सकेगा है?
है?
उठाए नहीं तो गाय के रूप में गाय के रूप में जो थी जगने वो मन के भगवान को भगवान सभी के मनोभाव को समझ जाते हैं। भगवान को मनोभाव पता था, सबको पता है भगवान अंतर्ज्यामी है, सभी के अंतकरण की भावना को समझते हैं। गाय वहीं खड़ा होकर बस तुरंत खड़ा भागना नहीं था, तुरंत खड़ा होकर भगवान की तरफ बड़ा करुणा दृष्टि में देखने से भी समझ जाते आंख से अश्रु टपक जाता है, लेकिन वो भागी तुरंत भागना नहीं था उसको। गाय रूप धारण करने की उसको आवश्यकता नहीं था, माता पृथ्वी तो ये कपट करके गाय का रूप धारण कर लिया है, तो इसके कपट रूप है इसलिए भगवान ने इसको मारने भागे। तो उन्हें अपने स्वयं रूप में प्रकट होकर हाथ उठाना था, एक देवी है ना स्वयं, स्वयं कैसे है वो, पृथ्वी एक देवी है, है? अब पृथ्वी माता भारत माता कहते ना, तो पृथ्वी माता एक वो देवी है यज्ञ की भाग लेती है, तो देवी रूप में स्वयं रूप में प्रकट होकर अपने आधे आधि दैविक रूप में प्रकट होकर अपने रूप में प्रकट होकर पर शरण करती थी, हाथ उठाती थी, वो न करी गाय रूप धारण करके भाग ली, गाय उसकी असली रूप नहीं है, समझ रहे हैं? असली रूप तो दैवी जिस रूप में वो यज्ञ की भाग खाती है उसमें शरणागत होना था, लेकिन भागने लगे तो जानती भी है ये भी मेरा पति भी है, बाद में स्तुति करेगी, हम आपने तो मेरे को आप स्वयं उद्धार किए थे हिरण्यकश्यप के गर्भ, आगे स्तुति में फिर आएगी, तो आप वो भी स्वयं मुझे मेरी रक्षक हो स्वयं फिर मुझे वध करना चाहते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक में विशेष रूप में माता पति ने ये युक्ति दे रहे कि आपने सृष्टि के आप सृष्टि के प्रारंभ में ही अपने अकल्पनीय शक्ति से समस्त जड़ तथा चेतन जीवों का उत्पन्न किया और आप उनकी आप उसी शक्ति से ही जीवात्मा की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। भगवान ही सबके स्रष्टा है, यत आदौ असृजत चरा अचरम, आप ही सब चरा अचरा सब कुछ जगत को स्वमाया अपने शक्ति से ही इसको सृष्टि किए हैं, इसलिए अभी आप फिर ये सभी को पालन करना चाहते हैं। आत्माश्रय आप नहीं आश्रय में शरण जो शरण में आपके आश्रय में जो आता शरणागत होता है तो आप ही उसको फिर रक्षा करते आपके पालन करते हैं, आप कौन सष्टा नहीं हो, आप सभी के पालनहार भी है, आप सबके सृष्टि किए हैं और सबके पालन भी करते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुमार इच्छाए विश्वे सृजन संहार तुमी सर्वे इच्छाए विश्वे सृजन संहार तव इच्छा मते ब्रह्मा करेण सृजन तव इच्छा मते विष्णु करेण पाण मते ब्रह्मा करेण सृजन तव इच्छा तव इच्छा मते शिव करेण संहार तव इच्छा मते माया सृजे कारागार तव इच्छा मते जीवे जनम मरण
समृद्धि निपात दुख सुख संघटन तब इच्छा सुख संघट मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे तुमि त रक्षाकार पालक मार तुमार चरण भरसा छाड़िया तुमार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया तुमार इच्छा रे अच्छी निर्भर भक्ति विनोद अति दीना किंचन भक्ति विनोद भक्ति विनोद अति दीना किंचन भक्ति विनोद तुम्हार इच्छाए तार जन्म मरण तुम्हार
तो क्या कहे भक्ति मोहन ठाकुर शरणागति हैं शरणागत तो कहे कि आप ही इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु पालन करते हैं शिव इसका संहार करते हैं माया आपका इच्छा से ही ये त्रिगुणात्मक ये संसार को रचना की है बद्ध जीवों को यहां बांध के रखी है आपके इच्छा से ही जीवों की जन्म मरण समृद्धि और पतन सब कुछ आपकी इच्छा से ही होता है आप किसको रक्षा करेंगे तो उसको कौन मार सकता है इसलिए मैं अपने निज बल ने तुम्हें तो रक्षक आप ही मेरी रक्षक हो आप मेरे पालक हो आपकी चरण केला मेरा कोई दूसरे गति नहीं है इसलिए मैं अपने बल बुत्ते पर निज बल चेष्टा प्रति मैं अपने बल अपने चेष्टा के प्रति भरसा छोड़कर आपकी चरण में पूर्ण आश्रित हूं आप मुझे रखिए या मारिए पृथ्वी को यही करना था पृथ्वी माता को क्या करना था यही कहना था कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया तुम्हारे तुम्हारे इच्छा रची निर्भर करिया पूरा शरणागत हो जाना था जब तक व्यक्ति ये शरणागत नहीं होता तब तक फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं इसलिए जो शरणागत हो जाता है तो उसकी रक्षा होती है शरणागति लेकिन माता पृथ्वी ने उस बात को अभी समझ रही है पहले समझ नहीं रही थी भाग्य इसलिए पिछले श्लोक में भी शरणागत कह कि मैं आपके शरण में आई हूं और आज के श्लोक में भी वो कह रहे हैं कि देखो प्रभु आप ही सृष्टि करने का सृष्टि के आपका ही सृष्टि करते हैं आप ही पालनहार हैं लेकिन ध्वंस करने का तो आपका कभी रोल नहीं बना है भगवान सृष्टि ध्वंस स्वयं रूप में नहीं कि कोई उस काम में किसको लगा देते हैं है? कौन ध्वंस करता है शंकर जी को लगा देते अभी आप ध्वंस करने का बद्ध करने के लिए मुझे क्या है मुझे आप ही सृष्टि किए हैं प्रजा को पालन करने के लिए आपका सृष्टि को आप ही कैसे ध्वंस करना चाहेंगे तो कह रहे कि कि सोमय आत्मश्रया वितर्क है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्मा की रक्षा करने के लिए उद्यत है, आप ये अच्छा है, आप रक्षा रक्षक हो, आप सृष्टा हो और आप इसकी रक्षा करना आपका क्या कर्तव्य है। त्वयैव स्वयं गुप्तम उद्यत, आप धर्म के नियम के परम रक्षक हो और फिर कथम नुमान धर्म परो जिंघांसति, मैं कहां जाऊं, फिर आप ही धर्म के रक्षक हो, आप सृष्टि के आप इसके पालक हो, आप ही धर्म के एकमात्र रक्षक हो, तो फिर मैं अब धर्म के नियम के परम रक्षक को आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों है, कहां जाऊं मैं, आप कहां से मेरी आश्रय है। तो उसी बात को पहले समझना था, शुरू से ही कहना था कि आप ही जो करना मारे मारना रखिए, जो मारिए रखिए, जो कुछ किए हैं वो न करके अभी इतने दूर भागना के क्या जरूरत है पूरे भयभीत। तो इसलिए शरणागत होना, तुरंत ही भगवान के सामने शरणागत होना, और पृथ्वी माता अभी समझ रही उसी बात को, अभी शरणागत हो रही है। इसलिए अपने आचार्य लोग ने अपने टीका में लिखते हैं इस श्लोक के ऊपर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ननु मयेव जगत सुज्यते संघ्रियते चेति सत्यं तदपि संप्रति पालने प्रवृतस्य तव मत बद्ध अनुचित इति आह। तो कहते कि आपने ही सृष्टि को बाह्य जगत को सृष्टि की है, मयेव मुझे ही जगत के रूप में पृथ्वी के रूप में आप सृष्टि सृजन किए हैं और ये सत्य है इसमें कोई, लेकिन तदपि संप्रति पालन प्रभुत, आप फिर प्रजाओं को पालन करने के लिए भी राजा के रूप धारण करके प्रकट हुए हैं पृथ्वी के रूप में, पृथ्वीराज के रूप में प्रकट हुए, लेकिन फिर मत बद्ध अनुचित, जब आप प्रजाओं को पालन करना चाहते तो मुझे मेरे को बध कर देना युक्तियुक्त नहीं है, कि मुझे बध कर देंगे तो प्रजाओं कैसे पालन करेंगे, मेरे को आश्रय करके सारे जीव जगत तिष्ठे हुए हैं, अब मुझे ही मार डालेंगे तो फिर कैसे इनके पालन होगा। इसलिए पृथ्वी ने माता ने युक्ति दे रही कि मुझे वध करना सही नहीं है, मुझे आप वध करने के लिए तैयार है, वध करने से किसको वध करेंगे, वध किसका होता है, आत्मा का होता है, नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक न चैन क्वदयन्त्यापनासु सोति मारुतु। माता पृथ्वी एक जीव, एक जीव है और उसके लिए शरीर इसको प्राप्त हुई पृथ्वी के शरीर है, तो कह रहे कि मुझे वध कर देंगे तो अर्थात शरीर को नष्ट करना चाहते थे, और धनुष बाण लेकर कोई भी हो, भगवान हो, कोई किसी को वध नहीं कर सकता, आत्मा को तो वध नहीं हो सकता, न हन्यति न हन्यमान हन्यमान है शरीर ये कहां से वध होगा, तो इसलिए पृथ्वी को नष्ट नष्ट कर देंगे तो पूरा समाप्त कर देंगे तो फिर ये प्रजा कहां रहेंगे। माता पृथ्वी कहती है कि शरीर को नष्ट कर देने से बस पृथ्वी को, ये जो प्रजा है जीव जगत जिनको आप पालन करने के लिए इतने क्रोधित हो तो वही सब कहां रहेंगे, मेरे आश्रय करिए, मेरे शरीर में ही सुतिष्ठी हुई और इसी को नष्ट कर दोगे तो कहां है। इसलिए उन्हें युक्ति दे रहे कि तदापि प्रजा पालने प्रवृत्तस्य तब मत बध अनुचित, मेरे को बध करना फिर अनुचित है, ये सही नहीं है। श्रीधर स्वामी भी कहते कि सृष्टि संघार कारक अहं एवेति, आप ही सृष्टि और संघार के एकमात्र कारण है, माता पृथ्वी ने से कह रही च एतदपि प्रजापालने प्रवृत्तस्य, सृष्टि संघार कारक होते हुए भी आप प्रजापालन के लिए अभी विशेष रूप में एक जो महाराज पृथ्वी के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, मत बद्ध अनुचित, मेरा बध कर देना उचित नहीं है। माता पृथ्वी से कह रही कि आप मुझे गोरूप मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हुए, इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि मुझे वध करना अनुचित है, इसलिए आत्मा आश्रय जीव विषय मेरे को आश्रय करके है जीव जगत निष्ठा हुआ है। माता पृथ्वी ने युक्ति भगवान के पास प्रस्तुत कर रही है श्लोक में, इसलिए कह रहे कि मेरे को आप वध करना सही नहीं है कि जीव कैसे तिष्ठेंगे, कैसे ये सुन जीव जगत आप पालन करने के लिए ही तो राजा की भूमिका निभाए हो, पृथ्वीराज बने, लेकिन किसको पालन करोगे, राजा पृथ्वी का है, पृथ्वी प्रजाओं को पालन करने के लिए, तार उसी को जिस धरा के ऊपर ये जीव जगत साथ तिष्ठी हुई है और उसी को नष्ट कर देना चाहते हैं, उसी को भ्रष्ट कर नष्ट कर देना चाहते हैं, तो फिर पालन कैसे करेंगे लोग, आप जो पालन करने के लिए राजा का भूमिका नारायणांच नाराधिपम्बा नृपति का भूमिका निभान भगवान ही स्वयं कहते कि जो मनुष्य में मैं नृपति हूँ राजा हूँ, गीता में कहते विभूति युग में नारायणांच नाराधिपम्बा मनुष्याणं नृपति चास्मिन, मनुपति हूं। ये भगवान का ही प्रतिनिधि राजा होता है, तो वो क्योंकि भगवान विशेष रूप में इस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखे, इसका पालन करना, सृष्टि का डिपार्टमेंट को दे दिए ब्रह्मा जी को, चलो सेकेंडरी क्रिएशन करने के लिए। ध्वंस का डिपार्टमेंट किसको दे दिए, शिव जी को दे, लेकिन पालन करने वाला स्वयं है, स्वयं पालन करते हैं, इसका लालन देखभाल करते हैं। तो इसलिए माता पृथ्वी ने अपनी युक्ति प्रस्तुत कर रही है श्लोक में कि आप ही प्रकृति में इसका स्रष्टा है, आप ही संहारक हो, सृष्टि और संहार का करता, आप फिर इसको पालन करने की भूमिका भी निभाने के लिए ही ये पृथ्वी महाराज के रूप में प्रकट हुए हो। लेकिन जब पालन करना चाहते हो तो फिर ध्वंस कैसे कर रहे हो, फिर ध्वंस बाण लेकर मुझे वध करना चाहते हो, मुझे ही आश्रय करके, मेरे शरीर को आश्रय करके ही ये सारा जीव जगत तिष्ठा हुआ है। इसलिए मत बध अनुचित, आचार्य लोग मुझे अपना टीका करते हैं, कहते मत बध अनुचित, माता कहते कि पृथ्वी ने युक्ति दे रही थी मेरे को वध करना अनुचित है, ये उचित नहीं है। श्लोक में संक्षेप में यही भावार्थ है। तो इसलिए आप सीखना चाहिए कि इस प्रसंग से कि जब कोई किसी कारण से आप दोषी ठहरा जा रहे हो, वह आप कुछ असत कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो गए, तो तुरंत क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, उसके लिए पश्चाताप और तुरंत शरणागत हो जाना चाहिए, कहाँ, भगवान की शरण में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तुरंत ही शरणागत, भगवान के सामने शरणागत हो जाना चाहिए। बद्ध जीव का प्रवृत्ति है, यदि कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत जोर जोर से घोषणा करेगा, प्रशंसा चाहता है उसके, प्रशंसा कोई प्रतिष्ठा चाहता है सब लोग, कहे तुम इतना, कोई आपको प्रशंसा कर देगा बहुत, है तुम इतनी अच्छा आदमी है, तुम्हें ऐसे ऐसे क्या बोला, तो बहुत अच्छा लगता, प्रशंसा सबको अच्छा लगता है ना, कोई यदि गाली देगा थोड़ा क्या होगा, बदमाश है, मुख नहीं देखना चाहता, चलो यहाँ से, प्रशंसा सबको अच्छा लगता है। कोई यदि कुछ ऐसे साधारण, यदि कोई निर्जल एकादशी कर लिया, निर्जल एकादशी व्रत किया और मैंने रखा निर्जल एकादशी व्रत, दूसरा दिन जो पहले क्या करेगा, जो किसको देखेगा क्या बोलेगा, उसको प्रकृति वही की नहीं लग रहा, लेकिन वो जान दूसरों को बताना चाहते कि दूसरों के पास में थोड़ा बताना चाहते, देखो मैं क्या रखा निर्जल एकादशी, तो दूसरों को बोलेगा, कोई मित्र देखे बोले देखो आज बड़ा वीक लग रहा है मुझे, बोले किस लिए वीक लग रहा है, ना मैंने निर्जल व्रत रखा है, बताना चाहता है, लेकिन कोई पाप कर्म करता तो कोई बोलना चाहता है इसको, कोई गलती किया, कोई पाप कर्म किया है, उसको दूसरों को नहीं बताएगा, उसको छुपा के रखना है। लेकिन शास्त्र कहता कि पाप को खोल दो सबके सामने, जो गलतियां हैं है? इसको सबके सामने खोलना, संत पुरुष जो होते हैं अपने कमी को सबके सामने खोलते हैं, आमी तो दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मरो गुण है, गोपीनाथ आमी तो दुर्जन अति, कौन करे, गोपीनाथ ठाकुर कहते हम ऐसे कह रहे कभी, लेकिन आचार्य रूप में हम सिखा रहे, हमारे दिल को खोलना चाहिए भगवान के सामने, बताना चाहिए हम कैसे दुष्ट है, लेकिन हम कह देना हम बड़े संत है साधु, हमको हम अपने पाप कर्म को दूसरे सामने नहीं खोलना चाहते, भगवान तो यही देख रहे, जैसे पृथ्वी को इसने डांट रहे हैं, इसलिए भाग रहे धनुष बाण लेकर मारने के लिए, कि हम अपना जो कमियों को पाप को खोल देना चाहिए, जब पाप दूसरे के सामने खोलोगे तभी क्या होगा, उसकी प्राश्चित तो वहीं से होती है, और जब पुण्य को दूसरे के पास में बोलोगे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, शास्त्र कहते हैं कोई एक निर्जल व्रत करके फिर दूसरे को एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, उसके निर्जल व्रत रखने का फल नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहते पाप को बोलना खोलना और पुण्य को छुपाना, अपनी भजन कथा न कहिवे जथा तथा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि आप कितनी माला जपा कर रहे हो, आप कितनी व्रत रख रहे हो, कितनी ऑस्टेरिटी कर रहे हो भगवान के, ये इसको छुपा के रखना, इसको बोलना नहीं किसको है, आपने कितने कैसे भजन करते हो उसको छुपा के रखो, और आपके पास में कमियां हैं उसी को खोलो है, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ, पूरी से रखित हईते आमी से लघिष्ठ, कौन कहे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, परमहंस लोग जो आचार्य लोग ने सिखाए कैसे अपने को दीनहीन पतित ऐसे ही समझना, जो इसी प्रकार अपने को प्रस्तुत करता है दीनहीन पतित फिर वो पतित पावन गौरहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। तो इसलिए हमें शरणागत होना चाहिए, शरणागत से ही भक्ति का प्रारंभ होती है। गीता के अंतिम निर्देशन क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब तक ये नहीं करोगे तो भगवान की भक्ति कहां शुरुआत होगी? भक्ति यही से शुरुआत होती है। गीता अंतिम निर्देश को फॉलो करो, जब सब छोड़ के भगवान के चरण में शरणागत हो जाएंगे, निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया। जो अपने पापों को खोलेंगे संपूर्ण रूप में दैन्यता के साथ, दैन्यता के साथ भगवान के चरण कमल को पकड़ेंगे, फिर भक्ति की प्रारंभ होती वहीं से, वहीं से। तो इसलिए प्रसंग में हमको यही शिक्षा मिलता है कि तुरंत भगवान का हमारा कमियां है तो गलती तो है, लेकिन माता पृथ्वी तो कौन सा गलती है, लेकिन हम बद्धजीव के रूप में बहुत गलतियां करते हैं। चार त्रुटियां हमारे पास है, बद्धजीव के पास में चार त्रुटि करने का स्वाभाविक है, धोखा देने की प्रवृत्ति, माया के द्वारा मोहित होना, अपूर्ण इंद्रिया और माया के द्वारा मोहित होना है, त्रुटि करना, माया के द्वारा मोहित होना, अपूर्ण इंद्रिया और एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति। ये चार कमियां सभी बद्धजीव का हमारे पास में है। बद्ध जीवन की स्थिति में चार स्थिति सब समय रहता है, सारी कमियां रहती है हमारे पास है। हम हमेशा कोई भी चीज देखते हैं वहां पर गलती क्या है देखने के लिए, तुरंत हमारा मती जाता है, अच्छा देखने के लिए नहीं। हमारा स्वभाव मक्खी की तरह बना हुआ है, कहां बैठना चाहते हैं, कहां गंदगी है वो बैठ जाना है, कहां मधु है वो मधुमक्खी की तरह हमारा स्वभाव नहीं बना अभी है। अभी खट जाते हैं आपको, ये ज्यादा कोई व्यक्ति इधर चलते चलते कोई किस पैर फिसल गया, गिर गया, आपको बड़ा आनंद आएगा है ना, है बहुत आनंद आएगा, हंसी आ जाएगा तुरंत मुख में, है बहुत अच्छा है। तो इसलिए कोई कुछ गलती बोल दिया तुरंत हम इसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई अच्छा बोल रहा तो उसको देखने के लिए नहीं प्रस्तुत नहीं रहेंगे। ये सब स्वाभाविक है, बद्धजीव के पास में गुण है, लेकिन जब तक है बद्धजीव शरणागत नहीं होगा तब तक कहां से भक्ति की शुरुआत नहीं होती है, है? तो उसी इस प्रसंग से ही सीखना चाहिए। माता पृथ्वी यदि प्रारंभ से ही शरणागत हो जाता था, भगवान क्रोधित होकर देखकर तुरंत ही गिर जाते थे चरण में, है? फिर समझ फिर उसकी माफी हो जाता था, लेकिन वो भागने शुरू कर दिया, गो रूप धारण कर भागने शुरू किया, इसलिए भगवान ने क्रोधित होकर भागे उसके पीछे धनुष बाण लेकर है। इसलिए कोई भाग कहां भागोगे, भगवान कोई बात छुपा है, सब जानते हैं, संसार में सभी को ठोक सकते हैं लेकिन भगवान में नहीं ठग सकते हो। आपके पहला जन्म के सारे रिकॉर्ड उनके पास में है, अभी क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो, सब कुछ उनको पता है, है? कोई भी बात उनको छुपा नहीं सकते, आपके हृदय में ही बैठे, इधर किस रूप में परमात्मा रूप अंतर्जय में बैठे, सब जानते हैं आपके रिकॉर्ड, कहां छुपाओगे, क्या बात उनको छुपाओगे, है? संसार में किसी दूसरे को झूठ मूठ बोल सकते हैं, तो भगवान सब जानते हैं। जब तक आप पूर्ण शरणागत नहीं हुए हो तब तक वो आपकी रक्षा नहीं करते हैं, है? इसलिए शरणागत होने से ही भगवान रक्षा करते हैं। शरणांग शरणागति होई वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो शरणागत हो जाता है, संपूर्ण शरणागत के छह अंगों को जीवन में उतार लेता है, तो भगवान फिर उसी की प्रार्थना सुनते हैं, है? दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वर्ण अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जना की कारण। इस प्रकार जो शरणागत हो जाता है, शरणागत के लक्षण को जीवन में उतार लेता, उसी को भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। नहीं तो नहीं, आप भागोगे और कुछ छुपाओगे, भगवान कहां रक्षा करेंगे, कुछ नहीं छुपा सकते भगवान से, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ हरे कृष्ण, रुको रुको सब एक मिनट रुक जाओ। को प्रभु जी बोल रहे कि बलराम कृपा क्या वृंदावन बिहारी इनके दीक्षा नाम है, भले बलराम हम जानते थे कि नाम बलराम था, अभी वृंदावन बिहारी प्रभु कह रहे कि अनाउंस करने के लिए कि शाम को गौर कथा, आज से गौर पूर्णिमा का पहला दिन तक, 7 दिन तक, आज का कितना तारीख है, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 7 दिन गौर कथा होगा यहाँ शाम को, कितने बजे, 5 से 7 गौरांग महाप्रभु के बारे में। तो गौर पूर्णिमा आ रहा है इसलिए जो आना चाहता तो 5 बजे यहां पधारी है। प्रसाद वो क्या अनाउंस करना था आपने?
हरे कृष्णा। तो महाराज जी का शाम को 7 दिन का सेमिनार रखा गया है गौर कथा के ऊपर। पिछली बार हमने 11 दिन नित्यानंद प्रभु का कथा सुना और अभी 7 दिन कथा सुनने को मिलेगा, तो ये बहुत लाभदायक है।